तो आज जो है भाई साहब के क्लास का विषय है तनाव मुक्त जीवन की सौगात। तो अभी हम सभी सुनेंगे भाई साहब से।
ओम शांति। तनाव मुक्त जीवन की सौगात। आप सभी महान आत्माओं को भगवान के घर से इतनी सुंदर सौगात मिल रही है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन। तो प्रायः देखा जाता है कि आज का मनुष्य तनाव की नाव में बैठकर जीवन यात्रा कर रहा है और जीवन के सफर में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो सफर भी हो रहा है, प्रताड़ित भी हो रहा है। तो ऐसे कलयुगी वातावरण में रहते हुए कैसे हम तनाव मुक्त रहे, ये कला हमें यहां से प्राप्त होती है। तनाव किसको कहते हैं? कोई न कोई प्रकार का बोझ, प्रेशर या डिस्टर्बेंस जब हमारी मन बुद्धि पर तन पर होता है तो उसको तनाव कहते हैं। और इस तनाव से हमें बड़ा भारी नुकसान भी होता है। क्या नुकसान होता है? बड़ा भारी नुकसान होता है, छोटा मोटा नहीं, बड़ा भारी नुकसान होता है। पहला नुकसान, तनाव युक्त जीवन जीने से हमारे तन की और मन की कार्यक्षमता, कार्य कुशलता और कार्य दक्षता घटती जाती है, वर्क एफिशिएंसी कम होती है। क्योंकि जब हम मन पर जिम्मेदारी का बोझ या समस्याओं का बोझ रखते हैं तो मन तो भारी होता ही है, लेकिन उससे मन की भी और तन की भी कार्यक्षमता घटती है, कम होती है। देखा जाता है पहले हमारा मन थकता है, फिर हमारा तन थकता है। और आज इस कंप्यूटर एज में हर एक के दिमाग में एक ही बात बैठी है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े के दिमाग में एक ही बात भरी रहती है, मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो बिजी रहते हुए इजी कैसे रहें, ये कला हमें यहां सीखने के लिए मिलती है। दूसरा नुकसान बहुत सूक्ष्म नुकसान है और बहुत गंभीर नुकसान है। कौन सा? मनोवैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया है, मनुष्य के शरीर में 75 ट्रिलियंस बॉडी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी। 75 ट्रिलियंस बॉडी सेल्स आर इन ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट एवर द थॉट्स वी आर क्रिएटिंग, ईच एंड एवरी थॉट हैज डीप इंपैक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी एंड एवरी टिश्यूज ऑफ दिस बॉडी। हमारे मन में जो भी संकल्प उठता है, चाहे सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है चाहे व्यर्थ है, हर संकल्प का प्रभाव सारे बॉडी के टिश्यूज पर और सेल पर पड़ता है, नर्वस सिस्टम के माध्यम से। और जब हम तनाव अनुभव करते हैं, किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव करते हैं, उस समय हमारे शरीर में एक नुकसानदायक हार्मोन क्रिएट होता है, केमिकल्स क्रिएट होता है, उसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, हमारे शरीर की जो भी सिस्टम्स होती हैं उसको सप्रेस करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। और सप्रेस इम्यून सिस्टम होने से शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेना शुरू करती है। साइकोलॉजिस्ट ने यह प्रूव किया है कि 75% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस। 75% रोग जो है पहले मन में उत्पन्न होते हैं, फिर तन में ट्रांसफर होते हैं। अभी हमें सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, हर परिस्थिति में हमें सकारात्मक चिंतन करने की कला प्राप्त करना जरूरी है। जब मन में बहुत सुंदर सकारात्मक संकल्प चलते हैं तो हमें सुख की फीलिंग होती है और हम स्वयं को स्वर्ग में अनुभव करते हैं, आई मीन हेवन। और किसी कारण कोई नकारात्मक संकल्प चलते हैं तो दुख की फीलिंग होती है, तो हम अपने को नरक में अनुभव करते हैं, आई एम इन हेल। तो सुख दुख की अनुभूति हमारे संकल्पों पर निर्भर होती है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक संकल्प क्रिएट करना सीखते हैं तो शरीर की कई बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, उसको मेडिकल साइंस में फेथ हीलिंग कहते हैं। वी कैन क्योर आवर ओन डिसीजेस बाय पॉजिटिव थिंकिंग। We can be our own doctor। ये दूसरा नुकसान। और तीसरा नुकसान, तनाव के कारण माया हमारा कान पकड़ती है और हमारे चेहरे से मुस्कान चुरा लेती है। चेहरे पर मुस्कान होती है वो माया कान पकड़ के चुरा लेती है। चेहरा कितना भी सुंदर हो, उस पर मुस्कान नहीं होती है कोई देखना नहीं चाहता है। उदास चेहरा कौन देखेगा? चेहरे की सुंदरता ही है मुस्कुराहट। स्माइल, हर्षित मुक्ता जो देवताओं के चेहरे पर हमेशा होती है। तो तनाव जब होता है तो ये हर्षित मुक्ता मुस्कान गायब हो जाती है। कैसे गायब करती है माया? तीन प्रकार के माध्यम से, चिंता, भय और बोझ। कोई ना कोई चिंता होगी, कोई ना कोई बोझ होगा, कोई ना कोई भय होगा। ये तीनों के कारण मन की प्रसन्नता खत्म होती है, चेहरे की मुस्कुराहट खत्म होती है और चेहरा उदास अनुभव होता है। एक स्लोगन लिखो, बहुत जीवन में फायदा करेगा आपको। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं और सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। सत्य ज्ञान जब हमें मिलता है शिव बाबा के द्वारा तो हमें सुख मिलने लगता है और चेहरा हमारा खिलने लगता है। हम सभी रूहे गुलाब हैं, परमात्मा बागवान बनकर इस रूहानी बगीचे को हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचने आता है। वो चाहता है मेरे बगीचे का रूहे गुलाब बहुत खिला हुआ हो। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो ये तीनों चीजें भाग जाती है, चिंता, भय और बोझ। परिणाम स्वरूप चेहरा हमारा हमेशा खिला हुआ रहता है, चीयरफुल फेस। समझा? तो कुछ भी हो हमें अपने चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने नहीं देना है। ये हमारी सुंदरता है चेहरे की। जैसे स्थूल मेकअप करते हैं तो ऐसे आत्मा की मेकअप, ऐसे दिव्य गुणों के श्रृंगार से हमें करना जरूरी है। तो तनाव मुक्त जीवन बनने से, अनुभव करने से हम खुशनुमा जीवन अनुभव करते हैं, खुशी अनुभव करते हैं। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। खुशी जैसी खुराक ही नहीं दुनिया में और गमी जैसा रोग ही नहीं दुनिया में। जीवन में खुशी पाने के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, कितने साधन इकट्ठे करते हैं, कितनी विधियां अपनाते हैं। पिकनिक पर जाएंगे, शिशोर पर जाएंगे, बगीचे में जाएंगे, कितना रिफ्रेशमेंट के लिए अनुभव करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं खुशी अनुभव करने के लिए। लेकिन देखा गया है जितने साधन अपने जीवन में घर में लाते हैं बढ़ाते हैं, खुशी धीरे धीरे और गायब होने लगते। क्यों भाई? कारण क्या है? खुशी तो बढ़नी चाहिए, साधन बढ़ने से खुशी बढ़नी चाहिए, लेकिन साधन बढ़ते हैं खुशी घटती है। कारण स्पष्ट है कि स्थायी खुशी, परमानेंट हैप्पीनेस, ये भौतिक साधनों पर निर्भर नहीं होती है। ये हमारे आंतरिक दिव्य गुणों पर, मॉरल वैल्यूज पर, कुछ प्रिंसिपल्स पर निर्भर होती है। आजकल की दुनिया में हर कोई क्या चाहता है? मेरी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली हो। क्या प्रयास करते, कितनी मेहनत करते हैं। पर्सनालिटी का क्रेज है आज दुनिया में मेंटेन करने के लिए। तो फिजिकल पर्सनालिटी आपकी कितनी भी हैंडसम हो, लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए आवश्यकता है फिजिकल पर्सनालिटी के साथ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का होना, तब चुंबकीय व्यक्तित्व हमारा निखरता जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए आवश्यकता है स्पिरिचुअल वैल्यूज की, मॉरल वैल्यूज की। एक स्लोगन बड़ा प्यारा लगता है सुनने के लिए, लिख सकते हैं आप, वैल्यूज के बिना मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं होती है। मूल्यों के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता है। जितने वैल्यूज को हम अपनाते हैं, मूल्यों को जीवन में अपनाते हैं, उतना हमारा मूल्य, हमारा महत्व, हमारा इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ता है। वो हमारे हाथ में है। लेकिन वैल्यूज को धारण, वैल्यूज का ज्ञान दुनिया में बहुत लोगों के पास है। बड़े बड़े भाषण देते हैं वैल्यूज पर। मैं 94 में जर्मनी गया था, 60 फेमस साइंटिस्ट के साथ बैठ रहा था। उन्होंने मुझे टॉपिक दिया हाउ टू डेवलप द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जर्मनी की बात है। मैंने एक घंटा प्रवचन करने के बाद उनको प्रेरित किया कि कुछ भी हो हमें राजयोग का अभ्यास डेली आधा घंटा करना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट प्रवचन के बाद खड़ा होके प्रश्न पूछने लगा। मेरा प्रश्न है, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, आप दोगे? मैंने कहा बताओ प्रश्न आपका क्या है। मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है। क्या प्रश्न है? दुनिया में वर्तमान समय आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बात तो सही है उसकी, संस्थाएं तो बढ़ रही है भाई, गली गलियों में आध्यात्मिक संस्थाएं, फिर भी मनुष्य का चरित्र का पतन हो रहा है। कारण क्या है भाई? कारण क्या है आप बताओ? सभी यहां बैठे हैं विद्वान लोग, महान लोग। किसी भी संस्था में आप जाओ, चाहे ब्रह्मा कुमारी में या किसी भी संस्था में जाओ, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। किसी को दुख नहीं देना है, वैल्यूज को धारण करना है, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। और हमें गौरव है, हमारा भारत देश आध्यात्मिक प्रधान देश है और हमारे पास इतना बड़ा आध्यात्मिक लिटरेचर उपलब्ध है। बड़े बड़े पहाड़ बन सकते हैं, इतने लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है और प्रवचन करने वाले भी हमारे पास ढेर है। बड़े बड़े सभाओं को रुलाना चाहे रुला सकते हैं, हंसाना चाहे हंसा सकते हैं, ऐसे स्पीकर भी हमारे पास है। भाई कमी किस बात की है? हाँ जी, ज्ञान अर्थात युक्ति, युक्तियां बहुत हैं, बताते हैं, लेकिन उन युक्तियों को धारण करने के लिए आवश्यकता है शक्ति की। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। ये शक्तियां केवल ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में उपलब्ध है। ताली बजाओ भाई एक बार अच्छी तरह से। शक्ति का सोर्स केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में। निराकार परमात्मा शिव इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। जब उनसे कनेक्शन हम जोड़ते हैं तो आत्मा में शक्ति आने लगती है और हमारी जो कमियां हैं वो घटने लगती हैं और अच्छाइयां जीवन में धारण करते हैं और अपना जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। चेहरे को कैसे सजाते भाई? मेकअप कैसे करते? पहले क्या करते हैं जी? क्या करते पहले? धोते हैं या नींद से ऐसे ही उठ के मेकअप करते हैं? अच्छी तरह से धोते हैं फिर बैठ के उसको मेकअप करते हैं। तो आत्मा को भी पहले साफ करना है, जो कचरा गंदगी कमियां है खामियां त्रुटियां है सारी साफ करना है, फिर दिव्य गुणों से उसको सजाना है। और दोनों बातों के लिए आवश्यकता है शक्तियों की, केवल वो परमात्मा से योग लगाने से ही मिलती है। जितना शक्तियां प्राप्त करते हैं जीवन में परिवर्तन अनुभव होने लगता है। आचार्य में और पंडित में क्या अंतर है बताओ? ये आचार्य है अरे पंडित है, दोनों में अंतर क्या है? पंडित केवल तोता राम बनके तोते की तरह ज्ञान देता है पंडित, आचार्य आचरण में लाता है फिर वो शेयर करता है, वो लो सुनने वालों के दिल को टच करता है। तो आचरण में लाने के लिए आवश्यकता है योग की शक्ति की, ज्ञान की शक्ति की, है ना? तब हम अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करने, सब में कमियां होती हैं, कोई भी संसार में ऐसा नहीं किसी न किसी प्रकार की कमी नहीं है, सब में कमियां हैं। उसको निकालना भी वो चाहता है लेकिन निकालेंगे कैसे हैं? उसके लिए राजयोग का अभ्यास जरूरी है। देयर इज नो वे, समझा? ये राजयोग क्यों करने की जरूरत है भाई? डेली आपने यहां इतने दिन से आए हैं, राजयोग 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 कितनी बार सुना होगा, ये क्यों जरूरी है? हाँ जी, विकर्म विनाश के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, पवित्रता को बढ़ाने के लिए, हाँ जी, राजा बनने के लिए। बहुत अच्छी बात है, देखो कितने अच्छे पहुंचे। और बोलिए मैंने पीछे वाली मैं 2006 में रशिया गया था, मास्को यूनिवर्सिटी में 200 युवाओं के साथ संबोधन कर रहा था। मुझे टॉपिक दिया था, करंट टॉपिक, हाउ टू ओवरकम एग्जामिनेशन फियर एंड हाउ टू डेवलप आवर कॉन्सेंट्रेशन पावर, जो वर्तमान समय विद्यार्थियों की समस्या होती है। मैंने अपने अनुभव के आधार पर उनके साथ कुछ बातें शेयर किया, लेकिन एक बात बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा था, रिपीट कर रहा था कि कितने भी बिजी आप हो, आपको आधा पौना घंटा डेली राजयोग का अभ्यास करना जरूरी है, आवश्यक है। प्रवचन के बाद एक स्टूडेंट, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट, खड़ा हो गया, हाथ प्रश्न पूछने लगा। मेरा प्रश्न है, बताओ जवाब दो। मैंने बोला बताओ कौन सा प्रश्न है? मुझे कोई फियर नहीं है एग्जामिनेशन का, मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर भी अच्छी है, मुझे राजयोग का अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों बार बार कह रहे हो आप, मुझे जवाब दो। बिल्कुल, प्रश्न का प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा भाई, है ना? प्रश्न तो बराबर पूछा, कॉन्सेंट्रेशन पावर भी मेरी सही है, मुझे कोई फियर भी नहीं है, मुझे क्यों जरूरत है इसके राजयोग की? मैंने सिंपल उदाहरण दिया, देखो गीता दीदी के पास मोबाइल बहुत अच्छा है, मैंने सिंपल उदाहरण दिया सेल फोन का, मोबाइल का। मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, बातें करते हैं, क्या होता है धीरे धीरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। मोबाइल की बैटरी डाउन होती है तो चेहरा अपना देखो, चेहरा भी डिस्चार्ज होता है। मेरी बैटरी डाउन है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो ये मोबाइल धोखा देगा, या अगर मोबाइल की बैटरी डाउन है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, कैन आई बोरो योर मोबाइल प्लीज, आई वांट टू सेंड सम इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या ले सकता हूं आपका मोबाइल, भिखारी की तरह मांगना पड़ेगा। तो मोबाइल के फंक्शन को अच्छी तरह से चलाने के लिए मोबाइल की बैटरी को डेली चार्ज करना जरूरी है, हाँ या ना बोलो? बिल्कुल सही है। ऐसे ये शरीर हमारा सेलफोन है, मोबाइल है, और आत्मा उसकी बैटरी है। हम कैसे उसको यूज करते हैं? संकल्पों के माध्यम से यूज करते हैं। सारे दिन भर में कितने संकल्प क्रिएट करते हैं? मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि एक मिनट में हम 13 से 15 संकल्प मन में क्रिएट करते हैं। 24 घंटे में नींद में भी हम सपनों में भी कितने संकल्प क्रिएट करते हैं? हजारों संकल्प मन में क्रिएट करते हैं। एनर्जी को यूज करते हैं, यूज ही करते हैं। इनपुट नहीं है, आउटपुट ही है। इनपुट है ही नहीं, क्या होगा भाई? मैं बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पर भी डिस्चार्ज बैटरी कितना दिन चलाओगे आप? फिर बाद में मेंटल प्रॉब्लम होंगे, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, चिंता होगी। फिर बाद में मेंटल हॉस्पिटल में आप जाके देखो कितने पेशेंट है। तो जैसे सोना 5-6 घंटा या खाना हर एक को जरूरी है हर रोज, ऐसे ये राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। हरेक को हर रोज आत्मा को भोजन शक्तियों का खिलाना जरूरी है। किसी भी धर्म का हो, किसी भी उम्र का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हरेक को ये अभ्यास करना जरूरी है। तो जब मैंने उसको ये जवाब दिया, उसने एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छा, थैंक यू। फिर वो सेंटर पर गया, फिर उसने अभ्यास शुरू करने किया राजयोग का, फिर अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया। कहने का मतलब आप सभी को राजयोग का अभ्यास शुरू करना है। यहां से जाकर गेस्ट है ना ये, तो मोस्टली बोलो, खड़ा करो जिसको अच्छा लगता है। हाँ, राजयोग का अभ्यास कौन शुरू करना चाहता है यहां से जाने के बाद? हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं, एक हाथ खड़ा करो जो रेगुलर करना चाहते हैं। रेगुलर जैसे सोना खाना रेगुलर चाहिए हर एक को, सर मेजोरिटी है, थैंक यू। क्योंकि ऐसे पवित्र स्थान पर आकर आपने ये प्रेरणा नहीं ली तो आपका यहां आना इतना सफल हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ये स्थान कोई भक्ति का स्थान नहीं है, ये स्थान सारी दुनिया में विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है। अमेरिका फमेरिका इसके सामने कुछ नहीं, इतना पावरफुल स्थान है ये। क्योंकि भगवान यहां इतने वर्षों से आ रहे हैं, कितने वर्षों से पधरामणी उनकी हो रही है, और सारे संसार की जो क्रीम है, आत्माएं, महान आत्माएं हैं, दादियां दादाएं हमारे, वो कितने वर्षों से यहां तपस्या कर रही है, कितना ये पावरफुल स्थान है। तो आप ऐसे भाग्यशाली आत्माएं हैं जो आपको यहां रहने का बहुत सौभाग्य मिला है, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली आत्मा है। आपको कोई प्रश्न पूछेगा आपको यहां क्यों, किसने लाया, आप कहेंगे दीदियों ने लाया, ये दीदियों ने नहीं लाया। आपके अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों की पूंजी ने धक्का लगा के भगवान के दरवाजे पर पहुंचाया। अगर वो पूंजी आपके पास नहीं होती ना, ये दीदी हजार बार फोन करती तो भी सॉरी दीदी बस यहां पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के दर पर पहुंच गए, भाग्य की निशानी है। अभी भगवान के दर पर पहुंच गए, आगे मुझे क्या करना है? भगवान को हमारा बाप है, उससे हमें खजाने लेने हैं वर्षे के रूप में। बचपन से मेरा एक ही संकल्प था, अगर इस दुनिया में भगवान होंगे तो मैं मिलना चाहता हूं, बाकी मुझे कोई दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कोई संस्था नहीं छोड़ी जहां नहीं गया। कितने शास्त्र पढ़े, उम्र के 22 साल तक चारों धाम किए, सब कुछ किया, लेकिन नई प्राप्ति हो गई भगवान की। मैं थोड़ा अशांत होने लगा अपने जीवन से, पढ़ाई करने के बाद भी थोड़ा अशांति अनुभव होने लगी, तो मैं शांति टेम्पररी अनुभव करने के लिए सिगरेट का पैकेट पीता था और हफ्ते में 2 बार शराब पीता था। शराब माना अल्कोहल, जस्ट फॉर गेटिंग पीस ऑफ माइंड। केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, वो अल्कोहल के बॉटल ले जाते थे हॉस्टल में, वहां पीते थे, फोकट में मिलता था। तो डेढ़ साल तो की अनुभव हो गया, डेढ़ साल के बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गया थ्रोट में, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा इसको आपको जल्दी छोड़ना होगा ड्रिंकिंग स्मोकिंग, नहीं तो आपको कैंसर हो सकता है थ्रोट इन्फेक्शन के द्वारा। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं भी छोड़ना चाहता हूं लेकिन मेरे पास शक्ति नहीं है। फिर कोई मुझे नागपुर में ब्रह्मा कुमार विद्यालय खुल गया था 1970 में, कोई आंध्रा का एक व्यक्ति मुझे बार बार कहने लगा चलो। मैंने कहा देखो मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम दोबारा मेरे पास नहीं आना। तीन बार डांट दिया उसको मैंने, फिर चौथी बार भाई जी अरे तुम आदमी है क्या है, चलो ना एक बार। मैं चला गया वहां, फिर 7 दिन का कोर्स करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। मैंने 7 दिन का कोर्स 21 दिन में पूरा किया, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड पावरफुल, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड पावरफुल, कोई भी बात मुझे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है। जो आप कह रहे हैं आई वांट प्रूफ। लेकिन क्या हुआ, हर रोज एक एक घंटा सेंटर पर जाता था, तो 15 दिन के बाद मुझे एक कुछ ऐसा सुंदर अनुभव हो गया, अलौकिक अनुभव हो गया कि कोई आध्यात्मिक शक्ति मेरे पर काम कर रही है, और वो आध्यात्मिक शक्ति के मदद से मेरी जो शराब सिगरेट बुरी आदत थी वो छूट गई। मैंने कहा यहां कुछ है, कोई शक्ति है यहां। फिर उन्होंने कहा माउंट आबू में भगवान आए हुए हैं, उनसे मिलना है, कहा है तो आपको चांस मिल सकते हैं, आपको नियम पालन करने होंगे। मैंने कहा बताओ कौन से नियम है, तो उन्होंने नियम बताए मुझे, वो पालन मैंने किया और 73 में पहली बार यहां आया भगवान से मिलने के लिए पांडव भवन में। आप कहेंगे भाई बातें करना है, छोटी मुंह बड़ी बात, भगवान किसको कहते हैं? सारे संसार का जो क्रिएटर डायरेक्टर कंट्रोलर है, जिसके इशारे पर सारा संसार चल रहा है, उस हस्ती को भगवान कहते हैं। वो भगवान ऐसे ही मिल सकता है क्या? कैसे मिलेगा? वो तो निराकार है। देहधारी को तो किसी को भगवान नहीं कह सकते। गीता में 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, 9वें अध्याय में 11वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है, अवजानन्ति मा मुढ़ा मानुषी तनु माश्रितम परम भावम अजानंत मम भूत महेश्वरम, कि मैं निराकार हूं और एक साकार साधारण साकार माध्यम के द्वारा मैं गीता का ज्ञान देता हूं, लेकिन मूढ़मति लोग जो है मुझे पहचानते नहीं है, और जब मैं अपना कार्य पूरा करता हूं तब कहते हैं भगवान आप धरती पर आए थे लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। तो ये शुभ वेला है जो परमात्मा आकर हमें ये दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं इनके माध्यम के द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से। भई हम सुनते कान से जरूर, सुनाने वाला मुख से सुनाएगा तभी तो सुनेंगे ना। तो परमात्मा को किसी ना किसी रथ का आधार जरूर लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से उन्होंने 33 ईयर्स अपनी सेवा की, और 69 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद गुलजार दादी जी, उनका फोटो आपने देखा होगा, उनके माध्यम से 39 ईयर्स उन्होंने सेवा दी। राजस्थान में मैं कई जगह शिव के मंदिर में गया, शिव के मंदिर पर एक बड़ा नंदी होता है और उसके पीछे छोटा नंदी दिखाते, तीसरा नंदी कहीं नहीं देखा मैंने। ये बड़ा नंदी जो है वह ब्रह्मा बाबा की यादगार है और छोटा नंदी है गुलजार दादी जी की यादगार है। तो कहने का मतलब है परमात्मा किसी न किसी साधारण रथ में प्रवेश होकर ही अवतरण होते हैं। तो जब मैं 73 में पहली बार यहां आया, तो जिनके तन में भगवान आते हैं, गुलजार दादी जी ध्यान में चली गई, और जब वो बाबा आए उनके तन में, उनका चेहरा इतना स्पार्किंग फेस हो गया, एकदम ग्लोइंग फेस हो गया, और चेहरे पर इतनी लाइट, इतनी रूहानियत, और जब उन्होंने मुरली चलाना शुरू किया तो ऐसी अथॉरिटी, ऐसा लग रहा था दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आकर बैठी है और ये महावाक्य उच्चारण कर रही हैं। तो जब मैं उनसे पर्सनली मिला मुरली के बाद, मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि ये भगवान है और ये मेरा बाप है, जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। ताली तो बजाओ जरा भाई। भगवान की प्राप्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई प्राप्ति नहीं है। सारे संसार के भौतिक सुख साधन आपके सामने रखा जाए और दूसरी तरफ भगवान रखा जाए, भगवान के सामने ये कुछ नहीं। उस दिन से मुझे विश्वास हो गया, अनुभव हो गया कि भगवान मेरे पिता हैं और वो आ चुके हैं और ये नई दुनिया स्थापना का कार्य कर रहे हैं। तो मैंने 1.5 साल तक तो लेक्चरशिप किया कॉलेज में, फिर मैंने कहा पैसे कमा के करेंगे क्या, घर में तो सब कुछ है। तो पिताजी को बोला भाई तुम्हें 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा तुम अपने पास रखो, 1 बच्चे को दान करो। तो कहे मुझे बोला कि ठीक है जाओ, तुमको करना है करो जो करना है। पिताजी की छुट्टी के बाद फिर यहां 76 में यहां आया, 76 के द्वारा 7 में मैं सेवा पर उपस्थित। अभी 45 इयर्स हो गए हैं भगवान के सेवा में। और इंग्लिश मेरी एमएससी में इंग्लिश मीडियम माध्यम थी, तो इंग्लिश कार होने के कारण फॉरेनर्स जब आते हैं उनके क्लासेस कराने का भी गोल्डन चांस मिलता है। तो वो उसके कारण मैं सारे विश्व में 90 कंट्री में अभी तक जाके सेवा करके आया, पूरे विश्व में 5 कॉन्टिनेंट्स में 90 कंट्री में जाके आया। कितनी बड़ी बात है। कहने का मतलब है कि आपको अभी यहां से जाके राजयोग का अभ्यास शुरू करना है। आपके चाहने वाले कुछ बातें सुनाएंगे आपको, एक ही स्लोगन याद रखना है, सुनो जन की करो मन की। तो बोलने वाले लोग बहुत बोलेंगे अरे तुम कहां ब्रह्मा कुमारी चक्कर में फंस गया, ये गलत बात है, ये गलत स्थान है। कुछ भी को सुने सुनाए ना, सुनो भले, लेकिन करना मन की। अंदर से जब आवाज आती है ये मुझे सही स्थान मिल गया, मुझे ये करना है, आगे बढ़ना है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, 300 लड़के मेरे साथ रहते थे। मैं हर रोज 5 बजे जाता था सेंटर पर और 7 बजे आता था। जब मैं 7 बजे वापस आता था तो लोग उठते थे वहां और दातुन करके मुझे कहते, वो पागल आ रहा है, देखो वो पागल ब्रह्मा कुमार आ रहा है, मुझे पागल कहते थे। मैंने एक स्लोगन पक्का किया, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके 1000। हाथी मस्ती में चलता है, कुत्ते भौं 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 करते हैं, वो कसर कुछ नहीं होता है, उनका मुख दुखता है, चलो यार कोई असर ही नहीं होता इस पर। तो ऐसी स्थिति थी। आज जो मुझे जो पहले बुरा कहने वाले आज कहते हैं कि आप सचमुच महान हो, दुनिया जिसके पीछे भागती है उसको आपने त्याग किया, कितना आपने श्रेष्ठ जीवन बनाया, आज कहते हैं। तो कहने का भाव मेरा है करना जरूर है, और ये बाबा का ज्ञान धारण करने से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आया, जो जिंदगी में कभी नहीं परिवर्तन देखा होगा वो यहां आने के बाद आपके जीवन में आएगा। आप छोटी सी बात सोचो, ओडिशा की हमारी गांव की रहने वाली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो आपके ही गांव की है, 2009 से रेगुलर बाबा की बच्ची बनी है और रोज योग करती है, 4 बजे उठती है और रोज मुरली सुनती है, कि क्या जरूरत है ये करने की, क्या जरूरत है। इतने बड़े पोजीशन पर, सर्वोच्च सीट पर है, फिर भी हर रोज ये अभ्यास करती है। क्यों? क्योंकि भगवान से ये प्राप्तियां हरेक को जरूरी है, इसी से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है ना, और वही हमारा भविष्य उज्जवल बनाता है। सतयुग में जैसे जाएंगे भाई, नई दुनिया स्थापन होगी, नई दुनिया स्थापन करने वाला तो शिव बाबा है, जो स्थापन करने वाला ही हमारा बाप होगा। तो दुनिया में उस नए संसार में आपको क्या पोजीशन चाहिए वो तो आपके हाथ में है। कोई एमपी एमएलए बनता है ना तो वो जो मदद करते हैं ना, मुझे जिताकर दिखाओ, बस मुझे मदद करो, मैं जब सीट पर आऊंगा ना तुम्हारे सारे काम कर दूंगा मैं, और करता है नहीं करता है। ये तो भगवान है, भगवान कहते मुझे इस संसार में प्रत्यक्ष करो, मेरे लिए तन धन मन से सेवा करो, नई दुनिया जब बनाऊंगा ना जो तुम्हें स्थान चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, मेरी ये गारंटी है। वे बाप है ना वो हमारा, अधिकार है ना, हमारा अधिकार है, मांगते थोड़ी है हम उससे, हमारा अधिकार होता है। कहने का मतलब है ये चांस है, हमने छोड़ना नहीं है। चांस लेने वालों को चांसलर कहते हैं। अभी खुशनुमा जीवन अनुभव करने के लिए क्या अभ्यास आपको करना है? तनाव मुक्त जीवन को खत्म करना है हमेशा के लिए और खुशनुमा जीवन अनुभव करना है। सबसे पहली बात है सकारात्मक चिंतन करना आपको सीखना है। मन मेरा है, जैसे संकल्प मेरे मन में क्रिएट करना चाहूं मैं कर सकता हूं कि मन मेरी रचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड्स एविल वर्कशॉप। मन को खाली नहीं छोड़ना है, हर रोज बाबा के घर में जाना है, सेंटर पर जाना है, मुरली सुनना है, मुरली का मनन चिंतन करेंगे तो आपके मन में सकारात्मक संकल्पों का स्टॉक बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे नकारात्मक संकल्प घटते जाएंगे और पॉजिटिव थॉट चलने से आपको ऊर्जा अनुभव होगी। क्योंकि जो अच्छा खाते हैं ना तंदुरुस्त रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी होती है ना, वो बड़ी मोटे ताजी होती है। वो कैसे होती है भाई? वो लोग कहते क्या खाते, क्या हो आप, कौन सी चक्की का आटा खाते, इतने तगड़े मस्ती हेल्दी। भाई वही चक्की का आटा खाते हैं जिस चक्की का आप खाते हो, लेकिन हम सभी चक्रों से फ्री रहते हैं, एक ही चक्कर स्वदर्शन चक्कर घुमाते हैं, इसलिए हम सदा मस्त रहते हैं। सुदर्शन चक्रधारी सब चक्रों से फ्री, तो खुशी है ना, वो खुशी की खुराक मिलती है तो सब कुछ होता है। हेल्दी माइंड हैज हेल्दी बॉडी। माइंड हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी रहेगी ना। माइंड ही रोगी है तो शरीर भी रोगी तो होगा ना, समझा? तो पहली बात क्या है? सकारात्मक चिंतन बढ़ाने की कला हमें सीखना है। बाबा के घर में जाकर मुरली सुनना है। ज्ञान का सागर परमात्मा, सत्य ज्ञान का सागर हमें मिला है, सत्य ज्ञान का सागर, उच्च कोटि का ज्ञान हमें देता है। शास्त्रों में तो नमक में आटे की इतना सत्य ज्ञान होता है। ये सत्य ज्ञान का सागर हमारा बाप हर रोज हमें ज्ञान देता है। उस ज्ञान को हमें सुनना है, उस पर मनन चिंतन करना है और जितना मनन चिंतन करते जाएंगे उतना मन हमारा सकारात्मक संकल्पों से भरपूर होगा। दूसरी बात, हमेशा खुशनुमा जीवन अनुभव करने के लिए समान में रहने का अभ्यास बढ़ाना है। स्वयं को सम्मान देना, कोई मान दे मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं भिखारी नहीं हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, भगवान मुझे बड़े बड़े टाइटल दे रहा है, सम्मान के टाइटलों से दे रहा है, इसलिए मुझे भगवान से सीखना है। स्वयं को मान देना अर्थात सम्मान में स्थित रहना ये सीखना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखना, अनुमान हमें हनुमान बनने नहीं देता है। क्या बोला? अनुमान, कोई भी संशय, कोई भी डाउट हमें हनुमान जैसा नहीं बनने देते। हनुमान किसको कहते भाई? जो हथेली पर पत्थर पहाड़ उठाता है, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली, उसको हनुमान कहते। अब ऐसा बनना है तो ये अनुमान खत्म कर दो, ये हमें हनुमान जैसा बनने नहीं देता है। तो क्या होता है, हनुमान को बोला कि भाई तुम ये सागर लांद कर, वहां से संजीवनी बूटी लाओ, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। वो कहने लगा ये कैसे काम होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उसका सम्मान जगाने के लिए उसको बचपन में जो कच्ची अच्छी बातें किया था उसने उसको याद कराई, तुम हनुमान हनुमान समझते क्या हो तुम? अरे बचपन में तुमने तो सूरज को भी अपने मुख में लेने का प्रयास किया था, तुम इतने बलशाली हो, महिमा करते करते उसकी शक्तियां जागृत हो गई। कहते मैं ये काम करके रहूंगा। सागर लान पर वो पहाड़ी उठा के आया। तो ये किसकी यादगार है? हमारी यादगार है। कोई पूंछ वाला और बंदर मुख वाला हनुमान कोई होके गया क्या? हम सारे हनुमान यहाँ बाबा के बच्चे बैठे हैं सारे। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार है, हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, समाया हुआ है। इतना ही है, उन शक्तियों को हमने जगाना है। शेर अपनी गुफा में सोया हुआ है ना, छोटा चूहा भी उसके बदन पर जंप लगाता है। अगर वो जगा हुआ होता है, जागृत अवस्था में होता है, किसी की ताकत नहीं होती है उसके गुफा के पास जाने की, क्योंकि जगा हुआ है। ऐसे हमारी शक्तियां भी जब आत्मा की जागृत होती हैं, हमारे सामने माया फटक नहीं सकती है, दुश्मन हमारे पर वार नहीं कर सकता है। बोलो है या नहीं, हर एक आत्मा में असीम शक्तियां है कि नहीं? बोलो भाई हाँ या ना। भाई लोग जब बोलो हाँ या ना। एक भी आत्मा इस सभा में ऐसी नहीं है जिसमें कोई ना कोई शक्तियां नहीं है, हर एक में है। बोलो है या नहीं है। कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान रहे। बहने बोलो। अरे यहां 1937 में इस संस्था की जब स्थापना हो गई ना, ये छोटी छोटी बच्ची आई और कोई माताएं आई जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, कोई स्कूल भी नहीं देखा। ऐसी 250-300 माताएं बहने को छोटी छोटी बच्ची आई और भगवान जी चले नई दुनिया बनाने। अरे इतनों को लेकिन भगवान नई दुनिया बनाएगा क्या? बना के दिखा रहा है सारे संसार में ये बहने हमारी छाई हुई है। क्या किया भगवान ने? जो अनेक आत्माओं का जो समान था, गिरा हुआ समान था, उसको ऊंचा उठाया, उनकी शक्तियां जागृत हो गई। और शक्तियां जागृत होने के बाद वो आज शिव शक्तियां बनकर सारे संसार को, बड़े बड़े गुरुओं को ललकार रही हैं। हमारी जानकी दादी जी कोई डिग्री भी नहीं, दसवीं भी नहीं पढ़, सारे विश्व को चलाया। इतने साल तक की संस्था की चीफ बन कर रही। तो ये सारी चमत्कारिक बात है केवल समान की। समान हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाता है। ऊपर की शक्तियां तो लेना ही है, उसके लिए तो योग करना ही है, लेकिन खुद में जो शक्तियां है उसको जगाना है। बोलो है या नहीं शक्तियां हमारे में? और पूछ रहा हूं आपको। हाँ जी, प्रमाण चाहते हो आप उसके लिए? तो आप छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक क्या हुआ, किसान जो है ना, अपने सारे दिन भर में खेती में मेहनत करता है और सारा दिन हल चला के एकदम थक जाता है, और शाम के समय उसको अपने घर जाना होता है। बड़ा धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहा है बेचारा, सारा दिन मेहनत किया, पत्ता हल चलाया, लेकिन क्या होता है, घटना उसके साथ घटती है। एक वो घटना ये होती है कि वो अचानक देखता है, जैसे जंगल पार करता है घर जाने के लिए, अचानक देखता है कोई जंगल का भयानक प्राणी उसके तरफ आ रहा है, शेर जैसा कोई भयानक आदमी। और जब उसकी आंखें शेर की आंखों से टकराती हैं, वो ऐसा बिजली की तरफ भागने लगता है, ऐसा भागने लगता है, जिंदगी में कभी नहीं भागा था, ऐसा तेजी से भागने लगा और उस शेर से बचाकर भागने भी लग गया, बच गया, ताली भी नहीं बजा रहा। अभी छोटी सी बात है, वो मुर्दे की तरह चल भी नहीं सकता था, इतना थका हुआ था, और कहां से शक्ति उसमें आ गई भाई? वो शक्ति उसके तन में ही थी, वो उसके मन में ही थी, उस घटना ने उसको जगा दिया और उसने उसका प्रयोग किया और वो अब बचाने में सफल हो गया, है ना? तो कहने का मतलब है हमारे में हरेक में ये ऊर्जा है कि, लेकिन वो सोई हुई शक्तियां है, डॉर्मेंट स्थिति में है, उनको जगाने का काम केवल समान करता है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसलिए जब हम समान में रहते हैं, खुद को सम्मान देने लगते हैं, धीरे धीरे ये सारी शक्तियां जागृत होने लगती हैं और खुशनुमा जीवन अनुभव करने के लिए हमें मदद मिलती है। ठीक है भाई, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ऐसे खुशनुमा जीवन की अनुभूति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, जो सर्वशक्तियों का सोर्स है उस परमात्मा के साथ हमें कनेक्शन जोड़ना है। ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें मदद करना चाहती है और हमें मदद करने की क्षमता उसमें है। सब मानते हैं, किसी भी धर्म वाले हो ना, डॉक्टर कहता है भाई मैंने तो अपना काम किया, अभी वो ऊपर वाला जाने, बोलते हैं ना। कोई भी किसान बहुत समस्या हो गई, कोई मिनिस्टर फिनिस्टर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, फिर कहता है ये ऊपर वाले थोड़ी दया कर। तो ऊपर बैठा जो है ऊपर ही रहेगा क्या, कभी तो नीचे आएगा ना, वो तो हमारा बाप है, उसको आना पड़ेगा ना। तो ऊपर उठना है तो ऊपर वाला का हाथ पकड़ना जरूरी है। ये नीचे वालों ने नीचे गिरा दिया और ऊपर वाला ही हमें ऊपर उठाता है, भगवान ही हमें ऊपर उठाता है। बाबा मुरली में कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। भाई क्यों बाबा याद करें, हर मुरली में, यहां कुछ बाबा के बच्चे भी बैठे हैं, हर मुरली में बाबा कहते हैं बाबा मुझे याद करो, मुझे याद करो। क्यों जरूरी है बाबा को याद करना बताओ, विक्रम भस्म होते हैं, ये होते हैं, बात सही है आपकी बात, लेकिन कोई बहुत गहरी बात बताओ, क्यों इस बाबा को जरूरी याद करना जरूरी है। बोलिए बहन बोलिए। हाँ जी, शक्तियां प्राप्त करने के लिए, बोलिए किसी को भी कोई भी बोलो। हाँ जी, जैसा संग वैसा रंग। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, और बोले कनेक्शन। मैंने इस बात पर बहुत सोचा, बहुत सोचा, जवाब क्या मिला, एनर्जी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ प्रवाहित होती है। परमात्मा ही एक जो सोर्स है, स्पिरिचुअल पावर हाउस है, उनसे कनेक्शन जोड़ने से ही ऊर्जा मिलती है। बाकी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, किसी को भी याद करने से ऊर्जा खर्च होती है, ऊर्जा खर्च होती है। किसी को भी याद करेंगे तो केवल परमात्मा को याद करने से ही शक्तियां मिलती हैं, ऊर्जा मिलती है। और परमात्मा कल्याणकारी है, मेरे बच्चे शक्तियों से माला माल हो जाए और माला माल होकर मेरे साथ चले, वे कल्याण चाहने वाला बाबा है ना। इसलिए हर मुरली में कहता है मुझे याद करो, मैं किसी भी दयादारे को याद नहीं, बात तो सही है, उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि वर्तमान समय जो है वो आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का समय है, खर्च करने का नहीं, यूज करने का नहीं, सेविंग करने का समय चल रहा है कि नहीं। इसलिए हमें राजयोग का अभ्यास को बढ़ाना है, और जितना जितना राजयोग का अभ्यास बढ़ता जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ती जाएगी, शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारी कमियों को निकालना और अच्छाइयों को धारण करने की जो प्रोसेस है बहुत अच्छी तरह से उसमें हमें सफलता मिलेगी, समझा। इसलिए राजयोग हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना जरूरी है। कितना भी बिजी है, सवेरे शाम हमको योग का अभ्यास आधा पौना घंटा करना ही करना है ना। जो होशियार बिजनेसमैन होता है ना, वो तीन बातें चेक करता रहता है, होशियार बिजनेसमैन, सभी बिजनेसमैन नहीं, होशियार बिजनेसमैन क्या चेक करता है, कितनी मेरी अर्निंग है, कितनी मेरी स्पेंडिंग है और कितनी मेरी सेविंग है। अर्निंग तो हमें परमात्मा की याद से होती है, वो जास्ती से जास्ती करना है। स्पेंडिंग माना यूज बहुत कम करना है ताकि सेविंग हमारी मैक्सिमम होगी, और हमारे पास सेविंग होगी तो हम अनेक आत्माओं को भी अंतिम समय बांट सकेंगे, और सारे क्लब में हम वो स्टॉक भी हम अपने लिए और अपने संबंधियों के लिए यूज कर सकेंगे, डोनेट कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। तो इसलिए संगम युग जो है ये परमात्मा के संग में रहने का युग है। इस संसार में केवल दो ही चीजें हैं, ईश्वर और नश्वर, तीसरी चीज नहीं है, ईश्वर और नश्वर। नश्वर माना व्यक्ति और वैभव, तो हमें तो सारे कल्प में इन आत्माओं के साथ व्यक्ति वैभव के साथ ही रहना है, रहे थे और रहेंगे तो सतयुग से। केवल ये थोड़ा सा समय मिलता है हमें भगवान के संग में रहने का, ईश्वर के संग में रहने का, इसलिए इसका पूरा हमें लाभ लेना है, ठीक है ना। तो योग को हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है, कनेक्शन से कलेक्शन, कनेक्शन नहीं तो कलेक्शन नहीं शक्तियों का, और शक्तियों का कलेक्शन जितना बढ़ेगा उतना आप यूज करते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भगवान भी करेंगे, नई दुनिया के लिए ऊंची पोजीशन के लिए सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा, है ना। लेकिन पहली बात क्या है, कनेक्शन मुझे मेंटेन करना है, ठीक है। तो राजयोग का अभ्यास करेंगे ना कि नहीं, पक्का। फिर गीता दीदी देखो, हमारी दीदियों ने इतनी मेहनत किया, सारी दीदियों ने भाई मेहनत सफल होनी चाहिए ना कि नहीं। मैं 25 साल पहले ओडिशा में आया था, बीजू पटनायक जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, मेरा बायोडाटा जब वहां मिनिस्टर में दिखा है ना, तो उन्होंने मुझे स्टेट गेस्ट का एक सर्टिफिकेट दिया, लाल कलर वाली कार गाड़ी दिया वो एम्बेसडर, 15 दिन सारे ओडिशा में मैं गाड़ी फ्री, ड्राइवर फ्री, सब फ्री, 15 दिन पूरे ओडिशा में मैं चक्कर लगाया, बाबा की सेवा की। फिर जा बाद में उनको चीफ मिनिस्टर को मिलके फिर इधर आया। तो बाबा के बच्चों का दुनिया के जो भी पोजीशन वाले होते हैं उन पर भी प्रभाव जरूर पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारी योग की शक्ति को बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। शक्ति से ही, युक्ति प्लस शक्ति, युक्ति हमें ज्ञान से मिलती है, शक्ति योग से मिलती है, युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति, दिव्य गुणों की प्राप्ति। हाँ, युक्ति आपके पास बहुत है लेकिन शक्ति ही नहीं है तो सब कैसे करेंगे, कुछ नहीं होगा, शक्ति तो योग से मिलेगा, है ना। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई बहुत कठिन प्रश्न है कोई ऐसा तो बोलिए, जिसका जवाब आपको नहीं मिला हो और मिलना चाहते हो, कोई प्रश्न है किसी के मन में तो बोलिए, बहने हो भाई हो कोई भी हो, है किसी का प्रश्न कि सबको मिल गया, आपको जवाब मिल गया, हाँ जी मिल गया, सब मिल गया, सब डाउट क्लियर। देखो भाई जी बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं, हाँ रब माना सब, रब में सब आ गया है ना, ठीक है ना। तो अभी खड़े हो जाओ सभी, भाई कुछ बजाओ जरा, ये सुस्ती सुस्ती लग रही है थोड़े से, फिर हम 10 मिनट योग करेंगे। अभी सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा ऐसे, बूढ़े की तरह ऐसे नहीं बैठना है, सीधा पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कॉपी पेन डायरी वेरी सब थोड़ा खुले में बैठो, अच्छी तरह से एक दो को टच नहीं होना चाहिए शरीर, एकदम खुले में बैठो। 15 मिनट हम ऐसा पावरफुल योग करेंगे, खो जाएंगे, ठीक है भाई। सीधा बैठो सा, ठीक है। ओम शांति। ईश्वरी रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जग मग रही हूँ, बस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है महासात्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने मुझे नई दुनिया के स्थापना के महान कार्य के लिए सेलेक्ट किया है मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं इस शरीर तो मेरा वस्त्र है एक साधन है मेरा रहने का घर है इस शरीर तो मेरी कार है मेरा अस्तित्व इस संसार में निराकार ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में है इस शरीर रूपी कपड़े को छोड़कर ही मुझे आत्मा को घर वापिस जाना है मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूं पवित्रता का सुंदरता मस आत्म ज्योति ने धारण किया है परम आनंद की अनुभूति हो मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर वापिस जा रही हूं इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गणा से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं फरिश्तों की दुनिया से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं ओह ब्रह्मांड की दुनिया में निराकारी दुनिया में मैं आत्म ज्योति पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा शांति धाम, मेरा मूल वतन। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। प्यारे शिव पिता मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे प्यारे शिव पिता ही है। प्यारे शिव पिता ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। इस सागर दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती जा रही हूं। मैं आत्मा सूरज मुखी बनकर ज्ञान सूर्य परमात्मा को एक टक देख रही हूं। ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूं, मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर हो रही है। इतने विशाल ब्रह्मांड में मैं आत्म ज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन मना रही हूं, मंगल मिलन मना रही हूं। सारे संसार का मालिक, जिसके इशारे पर सारा संसार चल रहा है, ऐसे सर्वशक्तिवान परमात्मा से मैं आत्मा शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूं, और इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूं। महाशक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे, शक्तियों का प्रकाश चारों ओर फैलाए, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रहा है। मेरे ब्रुकटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। मज शक्तिशाली आत्मा से शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैलाए। ओम शांति 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 ओम शांति।